तुम लोग क्या सोचते हो ये अपने शिष्यों की ओर बढ़े। हाँ सब लोग बोले बहुत शानदार है। कमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा हाँ प्रभुपाद मैं समझता हूँ सुरभी ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रभुपाद मुस्कुराए हाँ हरे कह रहा है कि सुरभी ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रभुपाद सुरभी की ओर बुढ़े जो कई सप्ताह से सोया नहीं था वे कहते थे किंतु मैं ये नहीं कहता केवल मैं तो तुम्हारी आलोचना कर रहा हूं मेरा यही नाम है मुझे तो हर समय शिष्यों की आलोचना करते हैं। एक बात निकल गया सेंटेंस दोबारा से पढ़ता हूं कि मैं तो तुम्हारी आलोचना कर रहा हूं मेरा यही काम है मुझे तो हर समय शिष्यों की आलोचना करते हैं। हम लोग जो भी नाम दे चुके हैं पहले वक्त बने हैं जो गुरु उनसे कुछ कह देते हैं हमारी आलोचना कर देते हैं हमको बुरा लग जाता है अरे मैंने इतना अच्छा काम किया फिर भी दिखाई नहीं हुई फिर भी अप्रिशिएट नहीं किया। और यहाँ जो है स्पष्ट कह रहे हैं भगवान के वर्ड्स क्या है उन पर गौर देने की बात है कैसे वो उस बात को समझा रहे हैं। इस भारत भारतीय वार्षिक तीर्थ यात्रा पर विश्व के कोने कोने से वृंदावन आने वाले इस्कॉन के भक्तों की संख्या 600 से कम नहीं थी। मुख्य कार्यक्रम अर्च विग्रहों की स्थापना और मंदिर का उद्घाटन था। आखिरी तैयारियां जोरों पर चल रही थी सफाई अलंकरण प्रसाद तैयार करना। अनेक महत्वपूर्ण आजीवन सदस्य और अतिथि पहुंच गए थे और 40 कमरों वाले अतिथि गृह में अपने अपने कमरों में ठहरे थे। प्रभुपाद की कल्पना साकार हो रही थी। उन्होंने वृंदावन में संभवतः सबसे सुंदर और वैभवपूर्ण मंदिर का निर्माण किया था जो निश्चय ही सक्रिय भक्ति और प्रचार की भावना से अत्यंत जीवंत था। उसके साथ ही कृष्ण भक्ति के साधक यात्रियों के लिए उन्होंने स्थानीय होटलों में सबसे अच्छे होटल की सृष्टि की थी। मैं आशीर्वाद नहीं करता हूँ 30 साल पहले इस काम का जो गेस्ट हाउस था वो वृंदावन में बेस्ट माना जाता था। बेस्ट आज भी है क्योंकि बाकी गेस्ट हाउस में ठाकुर जी नहीं वहाँ पे ठाकुर जी साक्षात विराजमान है परंतु अब होटल की तरह बन गए हैं इसलिए थोड़ा सा लोगों को जो भौतिक लोग हैं उनको थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है परंतु जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए आज भी वृंदावन का जो स्थान का गेस्ट हाउस है उसकी फैसिलिटीज उसके कमरे उसकी सारी सुविधाएं उसकी लोकेशन आज भी जो है लोग प्रेफर करते हैं भक्त भी जाता है कि बाहर ना ठहरू मैं इस काम के गेस्ट हाउस में जगह मिल गए तो वही रहूँ। पर इमेजिन करिए आज मंदिर का उद्घाटन होता है तो कितने लोग आते हैं और मैंने भी मिल रहा हूँ अभी नित्यानंद जोशी वो नोएडा में हुआ है तो कितने लोग आते हैं तो ये बताएंगे जब कृष्ण बलराम यहाँ स्थापित किए गए थे वो स्टार्ट किया गया था तब कितने लोग थे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 5-6 हजार थे 600 लोग उस जमाने में 77 के अंदर 75 के अंदर 600 लोग बहुत गिरे जाते थे। इट वॉज बिग नंबर क्योंकि तब भारतवर्ष के अंदर जो है इस स्थान का इतना प्रचार नहीं था प्रचारक नहीं थे परंतु देखिए तरक्की जो हुई है अब काफी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी तो आप 6000 से काम नहीं चलने वाला आपको 6000 के बदले में 10-12 हजार लोग मिलेंगे। नया कोई भी सलूशन होता है कल कितने लोग थे टोकरी वहां पर आई स्टिल रिमेम्बर 1999 के अंदर हमने स्टार्ट किया था तो वहां पर पहली बार प्रोग्राम किया था तो मेरा ख्याल 500-600 लोग आए थे। हम बड़े खुश थे हमने गुरु महाराज से कहा कि महाराज इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है क्योंकि हमारे पंडाल में 50-60-70-100 लोग होते थे तो वहाँ पे 5-6 लोग इकट्ठे हुए तो वो बड़ी भीड़ लगती थी सिनेमा फार्म हाउस के अंदर बड़े 600 लोग आ गए कमाल हो गया 99 की बात है। तो हमने महाराज से बोला महाराज ये फेस्टिवल जो है इसको आप ऐसा करिए कि ईयरली हो जाए हर साल 26 जनवरी को हो जाए तो तब से प्रयास चल रहा है आज जो है उसकी संख्या 8,000-9,000 के बराबर है आने वाले कल में और बढ़ेगी। तो ये जो बात हो रही है यहाँ पे 600 लोगों की उस समय 600 लोगों को बहुत बड़ा माना जाता था। मैदान में घूमते हुए प्रभुपाद नीचे रसिया हुए प्रांगण में पहुंचे उनका संगमरमर का फर्श स्वच्छ था चमक रहा था। ये अमेरिका में कोई किराए का मकान नहीं था जो अन्य यह एक मंदिर था, वैकुंठ के मंदिरों की तलाश, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। श्रीप्रभुपाद ने कहा यह पृथ्वी का वैकुंठ है, मैं समझता हूँ ये मंदिर भारत में सबसे बड़ा। ये जो लाइन यहाँ कही गई है, अमेरिका में कोई किराए का मकान नहीं था जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए बनाया, ये इसका क्या कारण निष्कर्ष लिखा है तो मीनिंग होना चाहिए ना उसका, रीजन तो नहीं। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आप जानेंगे कि अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर बहुत सारे मंदिर हमारे ऐसे हैं जो एक्चुअली चर्च बने थे, उनको फिर खरीदा गया, ओवरटेक किया गया, क्रय कर लिया गया, मतलब उनको जो है मंदिरों को चर्च से फिर इस्कॉन टेम्पल्स में कन्वर्ट किया गया। तो उसका उद्देश्य क्या था, बनाने का चर्च, परंतु यूज कहां हो रहा है, कृष्ण भक्ति। प्रभुपाद तमाम वृक्ष के सामने खड़े मुस्कुराते थे, वृक्ष की आवरणीय शाखाएं प्रांगण के कोने में पूरी तरह फैली थी। प्रभुपाद ने बताया किस तरह उस वृक्ष को काट देने का विचार हुआ था, किंतु उन्होंने रोक दिया। तमाम वृक्षों का संबंध श्रीमती राधा रानी की लीलाओं से है, वे बहुत विरल थे। वृंदावन में शायद केवल 3 तमाम वृक्ष है, एक मंदिर में यहाँ, एक सेवा मंदिर, एक राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में। श्री प्रभुपाद ने कहा तमाम वृक्ष इतना हरा भरा प्रफुल्लित है, इससे ज्ञात होता है भक्ति साधना निष्ठा युक्त है। इस बात से विश्वस्त होकर मंदिर सचमुच तैयार हो गया। श्री प्रभुपाद भक्ति कला के मंदिर स्थित अपने घर में प्रवेश हुए। उन्हें बहुत सी बातों के जीवन पर ध्यान देना था, बहुत से अभ्यास शिष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने दिल्ली जहाँ पहले कोई मंदिर नहीं था, एक सच्चे भक्त ने इच्छा की यहाँ एक मंदिर हो और सेवा हो। जो पहले के निर्द स्थान था और तीर्थ स्थान बन गया था, सच्चे भक्त की इच्छा में ऐसी ही शक्ति होती है। उपसंहार। एक तमाल वृक्ष में जो टेंपल के अंदर है उसकी जो शाखाएं हैं वो सारी ऊपर जा रही हैं कि नीचे की ओर झुकी हुई है, कैसी नीचे झुकी है, क्यों प्रणाम करना है, वो भी बिल्कुल एकदम। अगर आप निधि वन में जाएंगे तो निधि वन में जो पेड़ है वो ऊपर जा रहे हैं कि सब झुके हुए हैं, देखो सब जो है उसी के लिए। वृंदावन की जो आप एक जो वहां की लताएं हैं, वहां पे जो वृक्ष है उनका भी दर्शन देंगे, तो दर्शन क्या कर रहा है वो कृष्ण को हर समय प्रणाम झुके हुए। श्री प्रभुपाद भारत में अपनी सेवा या भक्ति के संबंध में प्राय कहा करते थे, वृंदावन मेरा निवास है, मुंबई मेरा कार्यालय है और मायापुर वह स्थान है जहां मैं परमेश्वर की उपासना करता हूं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक नगर है। प्रभुपाद का व्यवसाय कृष्ण की शुद्ध सेवा था और मुंबई में रहते हुए वे भारत में कृष्ण भावनामृत के ब्रह्मात्मक आयोजनों से अधिक परिचित होते। उन्होंने इस गांव की मुख्य शाखा को मुंबई में रखते हुए भारत में उसकी स्थापना की थी। अतः भारत में इस गांव की अन्य सभी शाखाएं मुंबई की मुख्य शाखा की कानूनी तौर पर उप शाखाएं थी। प्रभुपाद ने अन्य नगरों की अपेक्षा मुंबई में अधिक वकीलों और व्यवसायियों को इस गांव का आजीवन सदस्य बनाया और उसके अधिक मित्र पैदा किए। इसलिए जब भी मुंबई में होते थे तो केवल मुंबई केंद्र के संबंध में ही कानूनी सलाह ना देते, वरना भारत में अपने अन्य मामलों के संबंध में भी विचार विमर्श करते। चूंकि मुंबई एक आधुनिक नगर है जिसने पाश्चात्य नगरों के स्तर की व्यावसायिक और कार्यकालीन सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए प्रभुपाद भारतीय बाजार के निमित्त अपनी पुस्तकों के अंग्रेजी संस्करण तथा हिंदी अनुवादों को प्रकाशित करने के लिए अपने बुक ट्रस्ट की शाखा मुंबई में स्थापित करना चाहते। वृंदावन और मायापुर की तरह मुंबई नगर कोई धाम नहीं है वरना भीड़ से भरा एक अनाड्य नगर है। इस स्थान के सबसे बड़े अनुदान करता वहां रहते थे। यदि वे मुंबई में श्री प्रभुपाद की प्रगति को थी और उनके कार्यकलाप भी दूसरी जगह जैसे ही थे, अर्थात भगवद गीता और श्रीमद भागवत पर व्याख्यान तथा अष्ट विग्रहों की उपासना, फिर भी मुंबई को श्री प्रभुपाद अपना कार्यालय कहते थे और यद्यपि उनका कार्यालय था तो तो भी वहां वह एक मंदिर चाहते थे। श्री प्रभुपाद ने कहा मायापुर में स्थान है जहां मैं परमेश्वर की उपासना करता हूं। प्रभुपाद की धारणा मायापुर में एक ऐसा मंदिर बनाने की थी जो उनके आंदोलन का सबसे बड़ा मंदिर होगा। वे और उनके अनुयायी परमेश्वर की उपासना वहां उस शानदार ढंग से करेंगे कि सारा संसार प्रभुपाद के उपासना स्थल मायापुर चंद्रोदय मंदिर की ओर आकृष्ट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के मतानुसार इस युग के लिए निर्धारित उपासना संकीर्तन है। संकीर्तन उपासना का स्रोत मायापुर है जो चैतन्य महाप्रभु का मूल धाम है। श्रीमद् भागवत का कथन कि कलयुग में भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य के स्वर्णिम रूप में प्रकट होंगे और उनका कार्यकलाप हरे कृष्ण चक्र करना होगा। बुद्धिमान लोग उनकी उपासना इसी रूप में करेंगे। प्रभुपाद चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की उपासना उनके आविर्भाव स्थान मायापुर में अद्भुत ढंग से हो और इस प्रकार भूतपूर्व आचार्यों की भविष्यवाणी को वे सार्थक करें जो नवदीप के मैदानों में महान नदी नगर के उत्थान की कल्पना करते थे। मायापुर को श्री प्रभुपाद अपनी उपासना का स्थल इसलिए भी मानते थे कि उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने वहां पर बृहद स्तर पर प्रचार किया था और उनकी समाधि भी वही थी। क्योंकि श्री प्रभुपाद का स्वस्थ प्रचार उनके गुरु महाराज की सेवा के निमित्त था इसलिए वे मायापुर में प्रचार करके उसकी उपासना करते थे। मायापुर कृष्ण धामानंद के प्रचार का मूल उद्गम और प्रतीक था क्योंकि वहां पर भगवान चैतन्य और नित्यानंद ने वास्तव में संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया था जिसे अब श्री प्रभुपाद समस्त संसार में फैला रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का प्रेम स्वरूप संकीर्तन आंदोलन सारे संसार में फैलाना चाहते थे इसलिए अपने जीवन काल में उन्होंने उसे अनुप्राणित किया। उन्होंने विशेष रूप से रूप गोस्वामी को वृंदावन और नित्यानंद को बंगाल भेजा और स्वयं में दक्षिण भारत गए। इस तरह उन्होंने संसार में अपने मत के प्रसार का कार्य कृपा पूर्वक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए छोड़ा। वृंदावन श्री प्रभुपाद का निवास है। भारत के धार्मिक लोग और पश्चिम के धर्म यानी प्रभुपाद को वृंदावन का वैष्णव साधु समझते थे। जब उन्होंने जवाब एक बार उन्होंने कहा था कि मैं इस समय यहाँ संसार के सबसे बड़े नगर विवाद में बैठा हूँ किंतु मेरा हृदय वृंदावन के लिए तड़पता रहता है। मैं इस पवित्र स्थान वृंदावन को वापस जाकर बड़ा प्रसन्न हूँ। वृंदावन के लोग भी दो बार को अपने नगर का सफल व्यक्ति मानते थे। 1954 में पारिवारिक जीवन से अलग होने के बाद प्रभुपाद रहने के लिए वृंदावन चले गए थे। पहले वे किसी घाट के निकट एक मंदिर में रहे और बाद में राधा दामोदर मंदिर में चले गए। 1959 में संन्यास लेने के बाद भी वृंदावन में रहते रहे। जब वे वहां नहीं रहते थे तब भी राधा दामोदर मंदिर में उनके दो कमरे आरक्षित थे। कितने लोगों ने राधा दामोदर मंदिर देखा? कैसा लगता है? वो जो कमरा है जहाँ श्री प्रभुपाद का ग्रेटी जो लगा रखा है वो कैसा लगता? तो कई बार लोगों को लेके जाते हैं ना तो कहते हैं आप तो कहते थे इनका तिरुभाव हो गया है कि यहाँ बैठे हो साक्षात ऐसे लगता है कि जो एकदम दुनिया व्यक्ति होता है उसके लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये त्रोभाव हो चुका है या साक्षात उपस्थित है। इतना जीवंत वो जो है स्थान है, इतनी बढ़िया जगह उसकी जो है कल्पना की गई है, बिल्कुल बेड लगा हुआ है, बैठे हैं, टेबल है, पैना है, सब कुछ है, इतना साक्षात होता है व्यक्ति कई बार भ्रमित हो जाता है कि क्या ये ओरिजिनल है या उनका एटी। अब वृंदावन कृष्ण भावनामृत का स्थल है, कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थल है। यह वह स्थल है जहाँ भगवान चैतन्य ने 6 गोस्वामियों को भेजा था जिन्होंने वहां के पवित्र स्थानों की खुदाई करवाई थी, दिव्य साहित्य लिखा था और मंदिर बनवाए थे। किसी भी भक्त को वृंदावन अपना ही घर लगता है। हजारों वृंदावनवासी अपनी टहलियों में जब माला लिए होते हैं, हरे कृष्ण जपते रहते हैं तथा वैष्णव तिलक और वेशभूषा धारण करते हैं। वृंदावन राधा और कृष्ण का था और वर्तमान समय में भी वृंदावन के निवासी इसे स्वीकार करते हैं। अंदर को तो वृंदावन केवल शुद्ध भक्त को ही दृष्टिगोचर होता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो शुद्ध भक्त नहीं है वो वृंदावन को साधारण टाउन से तरह देखता है, चंद्रों की तरह देखता है, चोर हो गए हैं, इंजन फैला हुआ है, फलाना है, इस तरह की बातें उनके दिमाग में आती हैं। परंतु यह स्पष्ट लिखा गया है कि अंदर गोतवा वृंदावन केवल शुद्ध भक्त को ही दृष्टिगोचर होता है। वृंदावन कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध में स्थिर सभी आध्यात्मिक पुरुषों का शाश्वत निवास है। भारत में वृंदावन गोलोक वृंदावन का दिव्य प्रतिरूप है। गोलोक वृंदावन में शाश्वत स्वरूप है जहाँ के आध्यात्मिक संसार में श्री कृष्ण वास करते हैं। शुद्ध भक्त इस संसार में अपना जीवन समाप्त करके गोलोक वृंदावन प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। अतः कृष्ण के एक शुद्ध भक्त के रूप में श्री प्रभुपाद स्वभावतः वृंदावन को अपना घर समझते थे। वे कभी कभी कहा करते थे यदि वे बीमार हुए तो अस्पताल न जाकर वृंदावन जाकर अपने अंतिम दिन बिताना पसंद करें। वृंदावन की महिमा का प्रसार करने के लिए प्रभुपाद ने वृंदावन का परित्याग किया था, किंतु घर से दूर के यात्री की भांति वे सदा यही लौटने की सोचा। प्रकरण 45। कृपया पुस्तकों का वितरण कीजिए। सैन फ्रांसिस्को जुलाई 1970। श्री प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में 1970 ईस्वी की रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे थे। उस दिन ठंडक थी, तेज हवा चल रही थी और करीब 10,000 लोग भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे जो गोल्डन गेट पार्क से निकल रही थी। श्री प्रभुपाद हजारों सहभागियों के साथ उस शोभा यात्रा के बीच सड़क पर नाचे थे। सागर तट के सभा मंडप में उन्होंने बृहद श्रोता मंडली को संबोधित किया था और अपने शिष्यों को हजारों लोगों को निःशुल्क शाकाहारी प्रसाद वितरण करते देखा था, किंतु उन्हें विशेष प्रसन्नता उस समय हुई लगती थी जब एक भक्त लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खंड एक की आधा दर्जन अग्र प्रतियां लेकर वहां पहुंचा। भक्तों और उत्सव में सम्मिलित होने वाले उत्सुक लोगों से घिरे प्रभुपाल ने पुस्तक की प्रति हाथ में ली। ये राधा कृष्ण के पूरे रंगीन चित्र से अलंकृत उसके आवरण पृष्ठ की सराहना करने लगे। पुस्तक का आकार बड़ा था, करीब 10.5 इंच लंबा और 7.5 इंच चौड़ा। उसके दुपहले आवरण में सुनहरे चमकते हुए लाल अक्षरों में अंकित था कृष्ण। ऐसे लगता था कि मानो प्रभुपाद के श्रद्धालु हाथों में एक दिव्य आश्चर्य विराज रहा हो। इसने देखा है वो पहला हो जाओ मानो बड़ी सी तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, ये उस समय की बात है। ब्यूटीफुल बुक 3 वॉल्यूम्स में आया था, कृष्णा 1 कृष्णा 2 कृष्णा 3 तो तीन हिस्सों में इसको रखा था तो एक फुल वॉल्यूम की जगह आ गया। तो प्रभुपाद को दबाते हुए उनके कंधों के ऊपर से झुककर पुस्तक को देखने का लोग दर्शक नहीं रोक पा रहे थे। वे अपने प्रशंसकों को नहीं रोक सके जब प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए पुस्तक के पन्ने पलटे। उन्होंने पुस्तक के चित्रणों उद्धरण कागज और जिन सारी का परीक्षण किया और कहा बहुत अच्छा। उन्होंने एक पृष्ठ को पढ़ते हुए उस पर ध्यान केंद्रित किया, तब उन्होंने सिर ऊपर उठाया और कहा कि ये एक बहुमूल्य पुस्तक कृष्ण की प्राप्त हुई है और प्रत्येक व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए। कितने लोगों ने पढ़ी है कृष्णा, कितने लोगों ने नहीं पढ़ी, पढ़नी चाहिए। उन्होंने एक पुस्तक की प्रति हाथ में ली, शेष प्रतियों का ढेर उनके सामने रखा रहा। वे बोले जो कोई पुस्तक खरीदना चाहता है आगे आए और खरीद ले। लोग पुस्तक मांगने के लिए शोर मचाने लगे, 10-10 डॉलर दिए आगे हाथ बढ़ाने लगे। लोगों में हल्ला मच गया और प्रभुपाद ने देखते देखते सारी की सारी प्रतियां बेच डाली, अपने लिए एक भी प्रति नहीं रखी। जहां तक भक्तों का संबंध है, रथ यात्रा की सबसे अधिक चमत्कारी घटना श्री बहुपाल द्वारा श्री कृष्ण पुष्कर की भेंट थी। समूहों में बैठकर भक्त खरीद हुई प्रतियों का परिशीलन करने लगे और कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा करते हुए अफ्रीका के लोगों को उनके प्रभाव का अनुमान लगाया। ब्रह्मानंद ने बताया कि किस प्रकार 1967 में श्री प्रभुपाद ने पीछी लव लॉर्ड चैतन्य भगवान चैतन्य की शिक्षाएं पुस्तक की अंतिम प्रति 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क के अपने कमरे में सत्य व्रत को भेंट में दी थी। उस पुस्तक के पहुंचने से ठीक पहले प्रभुपाद ने अपने कमरे में बैठे सत्य व्रत से वार्तालाप कर रहे थे। सत्य व्रत उनका शिष्य था और अपने गुरु भाइयों से मामूली सी बात पर झगड़ा हो जाने के कारण कुछ समय से उसने आना बंद कर दिया था। जब पीछे जब लॉर्ड चैतन्य की प्रति पहुंची तो बाद में उसका प्रेम पूर्वक अवलोकन किया तब उसे सत्य व्रत को उपहार में दे दिया था। ब्रह्मानंद इस तरह श्री प्रभुपाद को अपनी एकमात्र पत्नी सत्य व्रत को देते हुए देखकर भौचक्का रह गया। ब्रह्मानंद जानता था कि प्रभुपाद को पुस्तक लिखने में कितना परिश्रम किया। उसने उसके प्रकाशन में स्वयं की सहायता की थी। उन्होंने एक वर्ष तक उसके मुद्रित होने की प्रतीक्षा की थी। ऐसा होते हुए भी उस प्रति के पहुंचने के तुरंत बाद प्रभुपाद ने उसे एक ऐसे शिष्य को उपहार में दिया था जो स्थायी रूप से उनका शिष्य भी नहीं था। सत्रत ने पुस्तक मांगी, प्रभुपाद को धन्यवाद दिया और फिर ऐसा गया कि दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। और मसीह कितना है, किसी को साथ वापस जोड़ने का प्रयास करना है, कृष्ण से जुड़ना जाए तो जो नाराज है, जो आना बंद कर दिया है, उसको पहली मंजिल देती कम से कम हो सकता है वापस लौटते। यदि भी श्री प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्यों में से भी कृष्ण भावना वाले साहित्य को वितरित करने की उतनी ही उत्सुकता हो जितनी उनमें थी, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि कैसे किया जाए। एक पत्रिका का वितरण करना और उसके लिए अल्प अनुदान मांगना एक बात थी, किंतु एक सचिंत बड़े ग्रंथ की बात ही दूसरी थी। जब अप्रैल 67 में टीचे जब लॉर्ड चैतन्य की पूरी खेप जहाज से न्यूयॉर्क पहुंची थी तो एक भव्य किराए पर ट्रक लाए रात से उसे लाद कर 26 सेकंड एवेन्यू ले गए। वहां से उन्होंने पुस्तक की प्रतियां स्थान के केंद्रों लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, मॉन्ट्रियल तथा अन्य स्थानों को भेजी थी और वे वहां पढ़ी हुई। कुछ भक्तों ने पत्र पत्रिकाओं में जाकर विज्ञापन छपवाने और पुस्तक भंडारों में भुगतान पर आने की कोशिश की थी, किंतु उनकी बिक्री नहीं हुई। इन सजिल विशाल पुस्तकों की बिक्री कैसे हो, ये एक रहस्य बना रहा। जब तक एक महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी तो वह भी संयोग से। यहाँ एक बात जो समझ में आ रही है कि आज हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें बड़ा आसान लगता है, टफ आज भी है। आज भी आसान नहीं है। बहुत सारे लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर जाते होंगे, जो गाड़ी में शीशा पर घटाते हैं, जो शीशा नहीं खोलते हैं, एक बार शीशा बुक लेने के बाद मुझे याद है मैं जाना लेकर रख दिया था। मैं लास्ट ईयर तो सुंदर एक बार गाड़ी के अंदर जो है चौक के ऊपर रख दिया, उसने शीशा बंद कर लिया तो और उस सुंदर का हाथ उसमें फंस गया शीशे में ना बंद करते तो पैसा चाहते थे जब आप दी तो पैसा मिले और जो गाड़ी वाला था वो पैसा देने को तैयार नहीं था, उसने अपना शीशा बंद किया तो हाथ बड़ा दस गया। फिर सरकार किसी तरीके से हाथ को बाहर निकाला तो बहुत गाड़ी वाला मिल गया, उसके पैसे नहीं थे। तो कितना डिफिकल्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना। और मुझे याद है कि हम लोग बिहार गए थे, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया और पता करी तो वहाँ पे मोटरसाइकिल पर बैठे लोग जा रहे थे तो बहुत सुंदर लोग हमारे साथ थे, तो उन्होंने जो है उस वक्त को एक किताबों का बंडल पकड़ा दिया तो बहुत सुंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे 100 रुपये मिलेंगे, मतलब कि हमारा जो कॉस्ट है इसकी वो 100 रुपये के आसपास है और 100 रुपये मिलेंगे। तो उन्होंने भक्त ने 500 रुपये निकाला तो सुंदर को बोला तो वो भी जेब में से पैसे निकाल रहा है कि उनको 400 रुपये वापस कर दूँ, तो भक्त मोटरसाइकिल वाला ले गया 500 रुपये में, वो इतना सा बंडल 100 रुपये वाला, मतलब हर वैरायटी के लोग हैं, मतलब देने वाले भी हैं और छीन के भागने वाले भी हैं, दो दो वैरायटी के लोग हैं। पर तो आज उन्होंने कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस साल भगवत गीता का, मेरे ख्याल में 1,30,000 हो गया। तो हम देखिएगा कि एक महीने के अंदर 30,000 लोगों की तरह बांटनी है, तो उसको 1,30,000 को जरा 30 से भाग करेंगे तो कितनी आएगी? अप्रोक्सीमेटली 4,000 के आसपास पड़ जाएगा। 4,000 कहना बड़ा आसान है, पर जब पेटियां लगेगी ना सामने तो 4,000 आदमी पीछे दिखाई नहीं देते, इतना ऊंचा ढेर हो जाएगा। उसको बांटना सुनने में 4,000 तो मानिए क्या है 4,000 सुनने में लगता है, परंतु जब उसको देखेंगे जब उसको करेंगे तो पता लगेगा कि 4,000 से प्रिटी बिग नंबर, छोटा काम नहीं, छोटा छोटा काम नहीं। और पाटने में भक्तों का उत्साह है, वो पूरा साल वेट करते हैं, नवंबर के अंदर ही शुरू हो जाता है, दिसंबर मंथ है, नवंबर में ही उत्साह जो भक्त जो है शुरू कर देते हैं, और अभी जनवरी तक भी चलता रहा होगा, अभी समाप्त नहीं हुआ होगा, हालांकि काउंटिंग जो है दिसंबर मंथ में होती है, परंतु उत्साह जो इतना होता है कि वो नवंबर में स्टार्ट हो जाता है और जनवरी के एंड तक ऑलमोस्ट वाल चलता रहता है। मैं उस दिन गुड़गांव लेक्चर देने जा रहा था तो मुझे भक्त मिले थे वहां पे, कुछ यहाँ के भक्त मिले थे मुझे, कोई टीम थी, एक टीम मिली, एक और टीम यहाँ की मिली थी, कौन कौन था यार भक्त थे वहां पे, और दो बार मुझे जो है बहुत सुंदर की टीम मिली वहां पर, कहां पंजाबी बाल कहां गुड़गांव, फेस्टिवल नहीं था, रथ यात्रा वगैरह ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं था, इट वॉज ए मैराथन मंथ। साइट चूज करनी, लोकेशन चूज करनी, वहां तक पहुंचना, अपनी गाड़ी मजा भी खड़ी करनी, उसके बाद वहां पर सर्दी के अंदर जब शाम को 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो 7:30 बजे मिला था, 7:30 बजे मिला था, तो 7:30 के आसपास लोगों से मिला था, तो कितना उत्साहपूर्वक डिस्ट्रीब्यूट कर देते, कितना जोर से कर देते। पर यहाँ जो है पढ़ेंगे कि संयोग से घटना क्या हो, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में एक जैसे कहते हैं स्पार्क, एक फायर क्रिएट हुआ। सन 1971 में एक दिन सैन फ्रांसिस्को के पुराने शहर में कीर्तन करने के बाद मंदिर को वापस जाते हुए दो ब्रह्मचारी कार में पेट्रोल लेने के लिए स्थानीय सर्विस स्टेशन पर रुके। जब स्टेशन का कर्मचारी खिड़की पर पैसे लेने के लिए आया तो एक भक्त ने उसे प्रश्न पुस्तक दिखाई, उस कर्मचारी ने उस पर रुचि प्रदर्शित की और दोनों भक्तों ने कृष्णावनामृत की महिमा का बखान करना आरंभ कर दिया। जब उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत के स्थान पर पुस्तक ले ले
जो कुछ हुआ उस पर विस्मित होकर
और अपनी सफलता से उत्साहित होकर दोनों ब्रह्मचारी अगले दिन पुस्तक के कई प्रतियों के साथ एक पंसारी की दुकान पे आगे जाने लगे। पंसारी, यू नो पंसारी क्या होता? जनरल स्टोर, जनरल स्टोर। आजकल का जनरल स्टोर हो गया ना, मतलब बड़ा पैक बैग ट्रॉली को सामान ले लो, तब तो वो तौल के देता, दाल चाहिए तो तौल के दे रहा है, घीरा चाहिए तो तौल के दे रहा है, हर चीज तौल तौल के। तभी पुराने जमाने से इलेक्ट्रॉनिक मीटर नहीं होते, दूसरे जमाने में होता था हर चीज को तौलना। पंसारी भी सेटिंग यू ग्रोसरी आइटम्स, घरेलू घर का सामान। इस बार भी वही हुआ, इस बार पुस्तक की दो प्रतियां दिख गई, दो बुक्स। सैन फ्रांसिस्को मंदिर के अध्यक्ष केशव ने लॉस एंजलिस में जीबीसी के निरीक्षक और अपने भाई कर्नल कर्नल को फोन करके बताया कि क्या घटित हुआ। केशव ने कहा, यह एक आश्चर्य जैसा है। कर्नल ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रोत्साहित किया और शीघ्र ही सैन फ्रांसिस्को मंदिर के आधे दर्जन भक्त कर्नल जाकर लोगों को पुस्तक। जब बुद्धिमंत एक दिन पांच पांच पुस्तकें बेचने लगा तो अन्य मंदिरों विशेषकर लॉस एंजलिस, सैन डियागो, डेनवर के भक्तों ने जुगाड़ों का अनुकरण करना शुरू। सवेरे रोज भगवद गीता के स्कोर की चर्चा होती है, सोचिए तब स्कोर में क्या था? दो बुक्स। स्कोर में था एक बुक, स्कोर में था पांच बुक। आज हम पांच अवतर में पांच लाख, कैसे कैसे भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसे कैसे किया है। मैं जब साउथ जाता हूँ तो साउथ में जो टेम्पल्स हैं, वेस्टर्न इंडिया में खासतौर पर साउथ एंड वेस्टर्न इंडिया में जो टेम्पल्स हैं, वो लोग ट्रेन में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ट्रेन में 100 किलोमीटर का एक ट्रैक ले लिया, यहाँ से 2 बजे के 3 बजे के आसपास चले जो ट्रेन जाती है, पिछले पास बना हुआ है, 100 किलोमीटर से वहाँ उतरे, वहाँ पे स्टेशन के ऊपर आधा घंटा 5 घंटा डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर जब अगली ट्रेन वापस आ रही है उसमें 100 किलोमीटर वापस आ रही है। मैं इन्यूमरेबल डिवोटीज से, जो पूना के डिवोटीज हैं, जो बेलगाम के डिवोटीज हैं, जो गोवा के डिवोटीज हैं, उनको ट्रेन में मिला हूँ। और ट्रेन में उनके यहाँ कहता रहता है कि आप उनका इतने हर जगह में एक डिवोटी है, टीम जाती है पूरी, और पूरी ट्रेन के अंदर जो है उनका एक फिक्स है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनको जॉब है, उनका यही काम करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। आई डोंट नो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, मुझे नहीं मालूम है, पर मैं जब तिरुपति गया था आज से कोई 10 साल पहले की बात है, तो टेम्पल बन रहा था, तब मुझे वहाँ पे जो है जो ज्ञान मिला, जो अंडरस्टैंडिंग मिली कि टेम्पल का टोटल कंस्ट्रक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ है, तब तक अब मुझे लेटेस्ट नहीं पता। सेम कंप्लीट इतना ब्यूटीफुल टेंपल बना है अष्टसखी, राधा कृष्ण के अष्टसखी, और पूरे टेंपल का जो कंस्ट्रक्शन बनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन से आया। मुझे कितना भक्तों में उत्साह रहा होगा, कितनी मेहनत रही होगी, डोनेशंस नहीं है, 1 करोड़ दे दिया किसी ने, 50 लाख दे दिया किसी ने, 20 लाख दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। टोटल कंस्ट्रक्शन ऑन द लैंड वो डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का कितना महत्व है वो इस चैप्टर में समझ में आया। तब बुद्धिमंत ने एक दिन में 5-5 पुस्तकें बेचने लगा, तो अन्य मंदिरों विशेषकर लॉस एंजलिस, सैन डियागो, डेनवर के भक्तों ने सुधारण का अनुकरण करना चाहा, और जिसने भी यत्न किया एक दो पुस्तकें बीच भी वैश्व बोध के आवेश में बन गया। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को बेचने से प्राप्त अनुभव और उनके विषय में भक्तों के साक्ष्य का आनंद एक विशेष प्रकार का था, जो उस प्रसन्नता से बिल्कुल भिन्न था जिसका अनुभव युवाचन विक्रय की कोई विधि अचानक हाथ पड़ जाने से साधारणतया करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप वे बहुत सा धन कमाने के कगार पर पहुंच जाते हैं। भिन्नता इस बात में है कि भक्तों के द्वारा पुस्तक का वितरण कृष्ण की भक्ति है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे प्राप्त उल्लास दिव्य होता है और बड़े से बड़े भौतिक सुख से भी परे। सामान्य व्यवसाय और कृष्ण चेतना युक्त साहित्य बेचने का व्यवसाय एक दूसरे से इतना ही भिन्न है जितना भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन से, और आध्यात्मिक जीवन को भौतिक दृष्टि से देखने पर उसे कोई समझ नहीं सकेगा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कृष्ण भावनामृत के परम आनंद को समझने के ऐसे अनुभवजन्य प्रयत्नों की तुलना मधु के स्वाद को जानने के लिए बोतल को बाहर से चाटने के प्रयत्न से की है। उन युवकों और युवतियों को जो अमेरिका में पुस्तकों का वितरण करने लगे थे, ज्ञान हो गया था कि कृष्ण भावनामृत देकर प्रभुपाद ने उन्हें नारकीय जीवन से बचा लिया था, और अब वे औरों को कृष्ण भावनामृत देने में उनकी सहायता करना चाहते थे, और उनकी पुस्तकों का वितरण करके वे जो प्रचार कर रहे थे वे आनंद का वितरण था, आध्यात्मिक आनंद का। दो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं इसमें शेयर करना चाहूंगा, स्टोरीज आई थी मेरे पास नेट पर, मैंने आगे फिर तो भी किया था। एक स्टोरी जो है वो जर्मनी की एक बालिका की है, एक भक्त बालिका 13 साल की उम्र थी उसकी। उसने जो है वो ट्यूशन कर रही थी रेलवे स्टेशन पे, तो उसने एक जर्मन को ऑलमोस्ट अराउंड 45 ईयर्स
छोटा सा घर था उसका, उसने वेलकम किया।
पूरे गांव के अंदर उनकी सारी की सारी किताबें बिकवाने में सहायता करें, उनके साथ दर्जन जाकर उन्होंने एंड देन शी टोल्ड, उसने कहा कि आज मेरे घर में यहाँ पर कृष्ण के प्रति जो मेरा आकर्षण है, जो कृष्ण के प्रति मेरा भाव पैदा हुआ है, जो मैं आज मंदिर कर रही हूँ, उसका कारण भी वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि मुझे किसी ने एक किताब दी थी जिसने मेरा जीवन बदल दिया, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी कि मैं अपने घर वापस छोटे से घर के अंदर स्थापित हूँ, परंतु मैं यहाँ पर अकेली गाँव में और ऐसा कोई नहीं है, मेरा ओन हाउस, तब मैं यहाँ पर कृष्ण भक्ति कर रही हूँ। ऐसे आपको जब पढ़ेंगे तो अनेकानेक उदाहरण मिलेंगे कि किस तरह से लोगों ने वो डिस्ट्रीब्यूशन को भगवान कृष्ण के प्रचार करने में उत्साह पूर्वक कार्यान्वित किया है। उत्साह के साथ, एक ऐसा उत्साह है इसके अंदर कि एक बार जो किताब पढ़ लेता है वो कृष्ण के आकर्षण से अछूता नहीं रह सकता। ऐसा एक नहीं, हमने टेम्पल्स में जब लोगों से मिलते हैं, प्रचार करते हैं, लोग कहते हैं कि हमको तो वहाँ एक भक्त ने किताब दी थी, उससे हमारा आकर्षण, तो बहुत सारे एक नहीं अनेकों ऐसी कहानियाँ वगैरह, तो लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के स्टाइल भी अलग अलग बनाए, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अलग अलग स्टाइल से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट एम केवल एक है कि किसी भी तरीके से भगवान कृष्ण के साहित्य का प्रचार प्रभुपाद द्वारा लिखा हुआ घर घर, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, देश देश पहुंचे। हरे कृष्ण।